شام لگا. हम लोगों ने भक्त विनोद ठाकुर की व्याख्या के अनुसार में देखा था यथार्थ में जीवालंपट कृष्ण का ही है और शोर चंचलता चपलता ये सब में कृष्ण का ही एकांतिक अधिकार है. तो इनका चौर ये और ये सब चीजें कहां अपने धाम में अपने सेवक के प्रति, जैसे महाप्रभु सीता से छीना झपटी करते थे और दूसरे अभक्त के चीजों पर उल्टे भी नहीं देखते थे और सीधा खोला बेचार से लड़ाई झगड़ा जैसे तैसे करके उनके चीज को झपटते थे, लूटते थे, लेते थे जोर पूर्वक. करें कि बद्ध जीवों के लिए स्त्री मध्य मांस संभोग प्रति बद्ध जीव नैसर्गिक प्रवृत्ति निसर्ग नैसर्गिक प्रवृत्ति माने क्या नहीं
निसर्ग नैमित्तिक प्रवृत्ति
बदला हुआ स्वभाव जो असल स्वभाव के गद्दी पर बैठकर और अपने को शुद्ध परिचय देता है, स्वभाव परिचय देता है, किंतु है वो निसर्ग बदला हुआ स्वभाव. अभी इन सब चीजों के प्रति जीवों का आकर्षण है किंतु होने पर भी उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए, उसे छोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए. अनेक समय हम जानते हैं कि ये बुरा काम है, फिर भी हम हृदय दुर्बल होने के कारण वैसा करते हैं. हम समझते हैं कि जो काम हम छिप करके लुक करके करते हैं उसमें कुछ जरूर टूटी है. छिप करके जो भी काम करते हैं जरूर ना कुछ जरूर उसमें कुछ गड़बड़ी है. इसने इनको छोड़ने का प्रयत्न होना चाहिए. जिन लोगों ने छोड़ा है और छोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं वो लोग वैष्णव है. जो लोग काम को चरम आश्रय करते चाहें चाहें तारा क्रम सब फालो है. जो लोग इनका प्रसार नहीं देना चाहते, आंतरिक रूप में छोड़ना चाहते, सत्संग में भगवत भक्ति के बल पर इनको छोड़ सकते हैं. भक्ति हो जाएगी तो हम छोड़ देंगे ऐसा भी नहीं. जसोदा जी से जैसा परिश्रम और साथ साथ में कृष्ण की कृपा, ये दोनों एक साथ में होगी, अन्यथा हम भक्ति होगी तब हम छोड़ देंगे ये सब, ये भी ठीक नहीं. अपना को जहां तक अधिकार है अपने अधिकार को हम काम में लाएंगे. किंतु कृष्ण दर पारायण अर्थात संभोग चिर दिन चलाइते थक गो એરુ જ્યાં તેની ઈચ્છા ભગવાનની કૃપા હોય ને. ઉદર પારાયણ, જો વ્યક્તિ इनको दबाने की चेष्टा नहीं, छोड़ने की चेष्टा नहीं करता है, भगवान के नाम करेंगे, अवैध देशी संग इत्यादि करेंगे, सन्यासी ब्रह्मचारी होकर के हम इसके विपरीत काम करेंगे, कुटुंब का भरण पोषण इत्यादि करेंगे, असत संग करेंगे, अब फिर हरि नाम करेंगे शुद्ध हो जाएंगे, यह बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये भगवान की कृपा नहीं पा सकते. कारण चौर्य लंपट चंचलता प्रभृति अपराकित कामदेव व्यतीत आर कहारो थाकते पारे ना, तार प्रतिद्वंदी के होते पारे ना. कहते हैं ये तो अपराकित कृष्ण में ही ये सब संभव, बद्ध जीवों के लिए नहीं, इसलिए इनको छोड़ना पड़ेगा. तात्पर्य ये है कि अद्वैत ज्ञान वस्तु निर्दोष है, उनमें जो देखा जाता है वो सब चीजें स्वाभाविक रूप में शुद्ध और निर्दोष रूप में है कृष्ण में, किंतु जीवों में नहीं. क्योंकि कृष्ण निर्दोष के आकर हैं और विधि और निषेध के अतीत है. तार भालो मंदे प्रसंग आशे में कृष्ण में हम ये नहीं विचार करेंगे, या जो मुक्त महापुरुष हैं उनमें भी विचार नहीं करेंगे कि उन्होंने क्या किया नहीं किया, ये हमारे अधिकार की बात नहीं है. कृष्ण क्यों छोटी छोटी गोपिकाओं का वस्त्र हरण किया, क्यों बंसी वादन के द्वारा रात में समस्त गोपियों को बुलाया, उनके पतियों से हटा करके अपने पास, क्यों? उनका अधिकार है. इसलिए ये कनिष्ठ अधिकारी अथवा विमुख लोग विचार करते हैं, इसलिए भागवत को ही नहीं मानते. कहते भागवत में ऐसा क्यों लिखा है, इसलिए नहीं माने. जिन लोगों का यह क्षय वेग शांत हो चुका है, वर्ष में जिन्होंने कर लिया है, वे धीर और धैर्यशाली हैं. धी माने बुद्धि मन, जिनका स्थिर हो चुका है. और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कहा है धीर कौन है, चरेण धीर वेद उज्ज्वला बुद्धि. कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा हो चुकी है, शास्त्रों के वचनों को मानने वाले हैं. कृष्ण की कथा श्रवण करने से सारे हित रोग भी दूर हो जाएंगे. पहले भक्ति आएगी कृष्ण कथा के श्रवण करने से, इसके बाद में ये सब दूर हो जाएंगे. इस बात को मानने वाला, स्वीकार करने वाला धीर व्यक्ति है जो ऐसा मानता है, और नहीं तो वो नास्तिक है, वो हरि कथा सुनने से भी उसको कुछ नहीं होगा. हम अपने प्रयत्न से पहले अपनी बुद्धि को शुद्ध कर लेंगे, तब फिर हम अनर्थ दूर हो जाएगा, तब भक्ति आएगी. उनको भक्ति नहीं होती, बल्कि भगवत कथा से हरिनाम करते करते करते, हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते करते करते, अपने आप जितने परिमाण में भक्ति आएगी उतने परिमाण में अनर्थ दूर होंगे, और इसी तरह से वो अनर्थों को दूर करेगा. दूसरा कोई उपाय नहीं। इसलिए निरंतर हरि कथा में लगे रहे, निरंतर हरि नाम करता रहे, तो धीरे धीरे अनर्थ दूर हो सकता है। और अनर्थ दूर हो जाए, अनर्थ दूर हो जाए, लाख कहें चेष्टा करें, अनर्थ नहीं दूर होगा। अब धीर का अर्थ कर रहे हैं, धीर मैंने कवि, पंडित, सुधी, भक्त और साधु। धीर मैंने तिनी समस्त पृथ्वी के शासन करते पाए, तहां से एक क्षमता आज रूप गोस्वामी इत्यादि सनातन गोस्वामी ने शिष्य नहीं किया, कभी पृथ्वी को शासन करने में समर्थ है, जगत इनका शिष्य है। चैतन्य महाप्रभु जी ने भी शिष्य नहीं किया, किंतु सारा जगत उनका शिष्य है, उनके परिकर भी ऐसे हैं। जीव गोस्वामी ने किसी को शिष्य नहीं किया, रूप गोस्वामी ने किया, जीव गोस्वामी, किंतु हम जैसे शिष्य करते हैं वैसे नहीं हम लोग जैसे। दिन रात उनके साथ में रह करके सारे शास्त्रों का अध्ययन करके और परमार्थिक जितना जो रूप गोस्वामी ने महाप्रभु इत्यादि सबसे पाया था वो उनके हृदय में किया, ये शिष्य। नहीं समझते हैं कि उनको उपनयन दिया कि नहीं, दीक्षा जैसा हम लोगों का आग जला करके, ये सब नहीं, ये तो हम लोगों जैसे मूर्ख जीवों के लिए ये है। जिन्हें लीला पुरुषोत्तम गोविंद व श्री गौर कृष्णेर नाम धाम कामेर सेवाय निरत संरत तिनी रूप गोस्वामी प्रभु एवं तद अभिन्न तद अनुवृंद अनुगत वृंद श्री उपदेश स्वामी प्राण इच्छा होइले सर्वे कृष्ण उन्मुख करिया तार सेवा विलास वर्धने जन्नो वहां दे नियोग वहां दे के कृष्ण अभिमुख करा प्रयोजन। जो लोग कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री गोविंद जी अथवा गौ कृष्ण का नाम धाम और काम इनकी सेवा में नियुक्त है, उसमें रत है दिन रात, इसका अतिरिक्त जिनका और कोई काम नहीं, वे स्वरूप गोस्वामी प्रभु और तद अभिन्न तद वही रूपानुग है। उपेन्द्र स्वामी प्राण करते की इच्छा होने पर सर्वे इन सबको कृष्ण उन्मुख बना ले। कैसे? मन का वेद तो विषयों का चिंतन करना है, विषयों का चिंतन करना हटा करके कृष्ण और कृष्ण के परिकरों का चिंतन करें। वाक्य का वेद है इसको लगाए कृष्ण की कथा में लगा दे, दिन रात कृष्ण की कथाओं का वर्णन करता चले, उनके भक्तों की कथाओं को बदल जाएगा विषय। उसी तरह से समस्त वेगों को कृष्ण की सेवा में नियुक्त करो। जो लोग ऐसा करते हैं वही गोस्वामी हैं या गुरु हैं। जो लोग नहीं कर पाते वो लोग गोस्वामी वंश में आने से या कहने मात्र से नहीं हो जाते। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि हम लोगों को गोस्वामी मत कोई कहे, गोस्वामी रूप गोस्वामी इत्यादि गोस्वामी। उन गोस्वामियों के बाद में देखो जैसे उनकी परंपरा में केवल एक को गोस्वामी कहा, भक्त विनोद ठाकुर सप्तम गोस्वामी। इसलिए गोस्वामी शब्द जिसको तिसको नहीं लगा देना चाहिए। गो माने पृथ्वी, इंद्रिय, श्रुति अथवा गो अर्थ है कृष्ण इंद्रिय सुख वांछा, तहां जहां आछे तिनी गोस्वामी। पृथ्वी, इंद्रिय, श्रुति अथवा गो शब्द का अर्थ कृष्ण की, कृष्ण को अच्छी लगने वाली सुख देने वाली जो वांछाएं वो सब, ये जिनका है वही गोस्वामी, दूसरे गोस्वामी नहीं। হংস সারাসার বিবেকীগণের কথা ভীষ্মদেবী বলিয়াছে। পাণ্ডবকে নিধনকে পশ্চাৎ মহাভারত যুদ্ধকে পশ্চাৎ যুধিষ্ঠির কো শান্তি দেনে কে লিয়ে পাঁচো পাণ্ডব কো শান্তি দেনে কে লিয়ে ভীষ্মদেব কে পাশ মে কৃষ্ণ পাঁচো পাণ্ডব কো লে গে দ্রৌপদী কে উস সময় ক্যা এক পর্ব হ্যায় শান্তি পর্ব। উস শান্তি পর্ব মে ইস সব কা বিচার কিয়া হ্যায়। কুটিচক হংস বহুদজ হংস পরমহংস গণের কথা যো সার ও অসার কো অলগ অলগ করকে উসকো এক কো গ্রহণ কর লেতা হ্যায় সার কো ও হ্যায় হংস। পহলে হুয়া সন্ন্যাসী চার প্রকার কে কন কন কুটিচক মানে ক্যা এক জগহ নির্জন স্থান মে কুটি বনাকর আপনি ইন্দ্রিয় কো সংযম করতে হুয়া ভগবত চিন্তন স্মরণ কীর্তন ইত্যাদি করতে ও কুটিচক কুটি নির্মাণ কর। इसके बाद में और जरा उन्नत हो गया तो बहुदक चक हो गया। बहुत जगहों का पानी उदक मैंने पानी विभिन्न जगहों का पानी ग्रहण करता है अर्थात एक जगह में नहीं रहता कुटी भी छोड़ दिया ये कुटी चक। अब इसके बाद में हंस सार और असार संसार में सबसे सार क्या चीज है भक्ति सार है और बाकी सब असार है इसको ग्रहण कर दिया। শরীর স্থূল শরীর আর সূক্ষ্ম শরীর ইসে আত্মা কো অলগ কর দিয়া চেতন আর অচেতন পদার্থ উসমে অচেতন কো দূর করকে চেতন কো গ্রহণ কর দিয়া। ইয়ে সব হংস কে বিচার হ্যায় দুধ আর পানি কো অলগ করকে দুধ কো অলগ গ্রহণ করতা হ্যায় পানি কো ছোড় দেতা হ্যায় এসে অসার চিজো কো ছোড় দে আর সার চিজ কো গ্রহণ করে। কেসে দত্তাত্রেয় দত্তাত্রেয় প্রত্যেক চিজ সে সার লে রে সব সে ভি সার লিয়া বেশ্যা সে ভি লে লিয়া পৃথিবী সে লিয়া সূর্য সে লিয়া হওয়া সে লিয়া আকাশ সে লিয়া চৌবিশ গুরু বনায় আর চৌবিশো সে অজগর সে সব সে উনকা গুণ লে লিয়া আর অসার কো ছোড় দিয়া। অজগর কা লিয়া কিন্তু অজগর কা যে দুর্গুণ হ্যায় ও নেই লিয়া। আকাশ সে ক্যা লিয়া আকাশ নির্লিপ হ্যায় আকাশ জেসা নির্লিপ হো উসমে মেঘ আনে সে ভি আকাশ কা কুছ নেই কুছ ভি উসে সম্বন্ধ নেই উসি প্রকার সে বিষয়ো কে আনে পর ভি উসে উসকা কোই সম্পর্ক নেই হ্যায়। উসি তরহ সে পৃথিবী সে লিয়া পৃথিবী কা গুণ ক্যা হ্যায় সহনশীলতা আর পেশাব করো টট্টি করো উসকো গড্ডা করো কুছ ভি করো ও কুছ নেই বলে এসে দূসরা হামারা হাজার অপকার করে হাম কুছ না বোল করকে ভগবত ভজন করতে রহে উনসে ইয়ে শিক্ষা দিয়া। হওয়া হওয়া দুর্গন্ধ কো লেতি হ্যায় সুগন্ধ কো ভি লেতি হ্যায় ফির ভি উসে কোই সম্বন্ধ নেই উসে ছোড় দেতি হ্যায়। ইয়ে সব যদি লে কোই তো ইয়ে অভি হংস হুয়া ইসকে বাদ মে ও পরমহংস হোগা পিছে। अब हम लोग कितना ग्रहण करते हैं ये विचार किंतु ये जो परमहंस की अवस्था है इतना होने पर भी उसे अर्जुन द्रौपदी श्रेष्ठ हैं ये परमहंस हैं कि परमहंस के भी गुरु हैं बहुत ऊपर चले जाते हैं किंतु ये विचार सब ऐसा कोई ग्रहण करे तब तो ग्रहण करो। परमहंस को परमहंस गणेर कथा जीवात्मा स्वाभाविक धर्मेर कथा। परमहंसों की बात क्या है जब जी भगवत में मुख करके मायाकृत सूक्ष्म और लिंग शरीरों से आच्छादित होकर के देहात्म बुद्धि प्राप्त करके संसार में घूमता है बड़े सौभाग्य से साधु संघ हो और साधु संघ का नियमित हरि कथा श्रवण करके धीरे 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 इन सब चीजों को छोड़ करके यदि कोई शुद्ध होकर के भक्ति प्राप्त हो और स्थूल लिंग को छोड़ देने के बाद में उसका स्वरूप उसके अंदर से प्रकाशित हो जाता है। जैसे स्थूल शरीर में हाथ पैर नाक कान सुंदर सर्वांग संपूर्ण रूप से सुंदर शरीर को दिखलाते हैं, ऐसे ही जीवों का एक स्वरूप है। वही परमहंसों की स्थिति अभी आभास है, आभास अभी है किंतु उनसे संबंध नहीं रखते, अर्थात तो ये स्वरूप सिद्धि है और इसके बाद में वस्तु सिद्धि में जीवों की शुद्ध दशा उपस्थित होती है। परमहंस गणेर कथा जीवात्मार स्वाभाविक धर्मेर कथा की करिया जीव सर्वोत्तम कृष्ण सेवा लाभ करते पारे तारूप गोस्वामी प्रभु शिक्षा दिया छे। ये रूप गोस्वामी ने इसकी शिक्षा दी किस प्रकार से जीव ये परमहंसों की बात जीवात्माओं की शुद्ध जो भक्ति की बात है वो कब कैसे समझेगा, इसके लिए रूप गोस्वामी ने इन सब श्लोकों के द्वारा शिक्षा दिया। प्रथम श्लोक में गुरु यथार्थ साधु त्रिदंडी गोस्वामी इनका स्वरूप परिचय दिया गया है, ये साधु कैसा होना चाहिए ऐसा देना है। इसके बाद में ऋणीय जातीय छ दोष तत्परे श्लोके धन जातीय छ गुणे निर्देश कर दिया छे। क्या ऋण माने की निगेटिव जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए उसको निषिद्ध चीजें पतले पड़ता है। छवे अत्याहार प्रयास इसको त्याग करने की बात है, इसलिए ये है हुआ ऋण इनको छोड़ो। और धन जाती है माने उसको ग्रहण करना है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तन तो इसके द्वारा भक्ति होगी। परमार्थ पथ के जो पथिक है प्रभुपाद जी कह रहे हैं द्वितीय और तृतीय श्लोक के संबंध में प्रभुपाद जी कह रहे हैं परमार्थिक पथ के पथिक जो हैं उनके लिए पहले विधि और पीछे राग क्रम पंथा से लिखे। छह दोष से मुक्ति होने छह दोषों से मुक्ति पहले लाभ करनी है। केवल ऋण परिशोध ही है ना, केवल ऋण शोध करना है ऐसा मत सोचो। माने क्या केवल ऋण के लिए ही चिंता करके बस ऋण शोध कर देंगे बस हो जाएगा, अर्थात निषिद्ध चीजें छोड़ देंगे और भक्ति हो जाएगी, नहीं होगा। छह भगों का दूर करने से ही भक्ति हो जाएगी ऐसी बात नहीं है, ये एक पथ प्रशस्त हुआ, इसके बिना भक्ति होगी नहीं शुद्ध, इसलिए इसको छोड़ना चाहिए। किंतु जब छोड़ दिया और भक्ति हो गई ऐसी बात नहीं, धन होना चाहिए, धन माने भक्ति होनी चाहिए। यदि धन नहीं होगा तो ऋण शोधन होगा, ऋण शोध कर सकते हैं, हमारे पास में कुछ ऋण है और धन नहीं है तो शोध कैसे करेंगे, कैसे देना होगा, कुछ तो आना चाहिए कहीं से, जब पैसा आएगा तब हम ऋण शोध करेंगे। ऐसे ही भक्ति जब आएगी तभी शोध होगा, अर्थात वो दूर होंगे, ये भी समझो। ओम विष्णु पाशील भक्ति विनोद ठाकुर ये दूटी श्लोक एकटी शब्द लैया एक एक शब्द लैया विशेष व्याख्या करिया छे प्रभुपाद जी का, एक एक शब्द क्या अत्याहार प्रयासस्य प्रबल्यल्पो नियमाग्रह जनसंघस्य लौलन्यंच एक एक और पाको वेग मनसः क्रोध वेग जीवा वेग उदर उपस्थित एक एक शब्द की उन्होंने व्याख्या की। अब हम लोग उसके तरफ में चलेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसको थोड़ा सा भी पढ़ना जरूरी है। ये भक्तिबाधक षड्दोष अत्याहार पहले से एक एक का अत्याहार किसको कहते हैं अच्छी तरह से समझा करके लिखा है। श्री रूप गोस्वामी हैज रिटन अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह भक्ति मनोज ठाकुर हैज एक्सप्लेन Each word, what is atyahar, prayas, prajalpa, niyamagra. We should know all these things and try to give up. Atyahar, prayas, sascha, prajalpa, niyamagra, janasangasya, lolanta, sarvit, bhakti. Iske pahle wo tika diye hain. Iske baas mein phir Bhakti Vinod Thakur ek ek ko alag karke diye hain. Hindi mein bhi hum log isko prakash karenge. इस श्लोक का गुण तात्पर्य विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यदि जो भक्ति चाहते हैं जो लोग भक्ति चाहते हैं इसका जरूर अच्छी तरह से आलोचना करेंगे और नहीं केवल मठ में रहने से नहीं होगा। हरि कथा यदि सुन करके उस पर विचार करके उस पर अमल करेंगे तो काम होगा। गुरु जी बार बार कह रहे हैं वैष्णव लोग कह रहे हैं शास्त्र कह रहे हैं हम सुन रहे हैं किंतु पालन नहीं करते हैं तो नहीं होगा। पालन करना चाहिए उसको। एक आदमी रोज हरि कथा सुनता है किंतु किसी सेवा में प्रवृत्ति नहीं होता प्रवृत्ति होती ही नहीं तो क्या इसका मतलब किसी भी काम में एक झाड़ू ठाकुर जी के मंदिर में झाड़ू देने से लेकर रसोई वैष्णव सेवा किसी भी काम में रुचि नहीं होती न कोई सेवा करता है कोई दायित्व नहीं गुरु सेवा के वैष्णव सेवा गुरु की सेवा माने क्या है कृष्ण सेवा करने से करना ही वैष्णव की सेवा करना ही गुरु जी की सेवा है। यदि कोई कुछ नहीं करता है हरि कथा केवल सुनता है तो इसका मतलब जो हरि कथा नहीं सुनता है तनिक भी उनको पालन करना चाहिए पालन करने की चेष्टा करना चाहिए। केवल बेश या लाल कपड़ा काम नहीं देगा। जो विशुद्ध भक्ति साधन में प्रवृत्त होंगे उन लोगों के लिए इस श्लोक का पालन करना आवश्यक है। विशुद्ध भक्ति क्या है जो साधन करना चाहेंगे उनके लिए अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माध्यनापृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम इसका जो साधन करेंगे कैसे अपने इंद्रियों के द्वारा जो कुछ करेंगे कृष्ण सेवा के लिए ही करेंगे अनुकूल को ग्रहण करके प्रतिकूल भक्ति का प्रतिकूल वर्जन करके नित्य निरंतर अनुकूल रूप में कृष्ण प्रीति के लिए सब कुछ करेंगे ये तो हुई भक्ति। अब इसके तीन विभाग है साधन भाव और प्रेम। तो पहले मैं इंद्रियों के शरीर के इन इंद्रियों से जो साधन करते हैं कृति भाव कृति भवेत साध्य भाव साधन विदा नित्य सिद्धस्य भाव संप्राकट्य। जब इस उत्तम भक्ति प्राकृत इंद्रियों की वस्तु नहीं है ये शुद्ध नाम भगवान की शुद्ध सेवा भक्ति प्राकृत इंद्रियों का कार्य नहीं है और हम लोगों को प्राकृत इंद्रियों के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। प्राकृत इंद्रियों के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं इसलिए जब अपने प्राकृत इंद्रियों से अप्राकृत भक्ति का अनुशीलन करने जाते हैं तो इसको कहते हैं साधन। अपराकृत जीवा से भगवान का नाम होगा, अपराकृत आत्मा के द्वारा भगवान की सेवा होगी, अपराकृत काम से भगवान की कथा सुनी जाएगी, किंतु ये तो हमको है नहीं। इसलिए प्राकृत के द्वारा जब अपराकृत को हम साधन करते हैं, है साधन नहीं वो शुद्ध, किंतु इसके बिना भी नहीं होगा, इसलिए उसको कहते हैं साधन। किस लिए? भाव को, भाव भक्ति को पाने के लिए इंद्रियों से उस उत्तम भक्ति का हम अनर्थग्रस्त अवस्था में जो अनुशीलन करते हैं उसको कहते हैं साधन। उन लोगों के लिए इस लोगों का पालन जरूर करना चाहिए। क्यों क्यों पालन करना चाहिए? भगवान ने जीवों के लिए एक बहुत ही दिव्य रत्न दिया है और वह है स्वतंत्रता। और भगवान ने प्रत्येक जीवों को यह स्वतंत्रता दे करके उनके लिए ये व्यवस्था की है कि मैं तुम्हारे स्वतंत्रता के ऊपर में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, मैं ये बतला दूंगा कि ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, अब तुम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करके जो अच्छा या बुरा समझो तुम करो, यदि अच्छा किया तो ठीक है, नहीं तो बुरा करे। भगवान हमारी स्वतंत्रता के ऊपर में या गुरु हस्तक्षेप नहीं करता, चाहे तो एक मिनट में बदल दे, जड़ को चेतन कर दे भगवान। गुरु भी हमारी बहिर्मुखता को एक सेकंड के अंदर में वो स्तब्ध कर सकते हैं, उनके अंदर में शक्ति है संतों में, जैसे नाग इत्यादि का कभी कभी देखा जाता है, किंतु फिर भी हमारी स्वतंत्रता के ऊपर में तनिक भी हस्तक्षेप नहीं करते। जैसे मान ले कि हम सन्यासी हो गए और सन्यासी होकर के अवैध स्त्री संग इत्यादि हम करते हैं, ठाकुर जी के नाम का कुछ करके अपने भोग में लगाते हैं, अपने कहे जाने वाले लोगों के भोग में लगाते हैं, ये क्या चीज है? षड वेगों को ग्रहण करना है, ये जीव की इसमें स्वतंत्रता है। भगवान नहीं चाहते जी ये सब करें, किंतु उसके स्वतंत्रता के ऊपर में हस्तक्षेप भी नहीं करेंगे। अब स्वतंत्रता दे दिया है, मैं साक्षी के रूप में देख रहा हूं, तुम्हारा एक एक पल का सब कुछ मैं साक्षी के रूप में ये ग्रहण कर रहा हूं, देख रहा हूं साक्षी के रूप में। तो मत समझना जी हम चोरी कर करके सब हम ठीक कर लेंगे, कोई नहीं जानेगा, ऐसा मत समझो, जरूर जानेंगे। हवा, पानी, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, दस दीक, सब साक्षी, इनसे प्रभु सब कुछ संग्रह कर लेते हैं। आखिर कहां करेंगे? पांचों में ही तरह करके करेंगे, पानी में, हवा में, पृथ्वी पर रह करके, दसों दिशाओं के अंदर में रख, तभी तो कुछ करेंगे। ये सब रिपोर्ट लेकर के किसको देते हैं? ये प्रभु को। अब प्रभु वो सब अंतर्जामी है, वो सब जान, इसलिए ऐसा मत सोचो जो डूब करके हम पानी पी लेंगे एकादशी के दिन और प्रभु नहीं जाने, इसलिए प्रभु सर्व सर्वज्ञ है, वो सब जानेंगे। किंतु हस्तक्षेप स्वतंत्रता कर लो, आकर रहा तो अच्छा तरह से दंड देंगे, माया उनकी दंड देंगे। इसलिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग मत करो। ब्रह्मचारी को हम लोग कितने परिश्रम से, कितनी शिक्षा दे करके सब करते हैं, किंतु थोड़े से स्वार्थ के लिए वो भी अपना नरक अपने आप खोद करके मरते हैं, स्वतंत्रता को का सदव्यवहार नहीं कर पाते थोड़े से सांसारिक लाभ के लिए। शुद्ध भक्ति के लिए जिनकी स्पृहा अत्यंत दृढ़ है उनके उपकार के लिए हम कुछ श्लोक का तात्पर्य परिष्कार करके हमें लिख रहा हूं। कौन कह रहा है? भक्त विनोद ठाकुर कह रहे हैं। जिन लोगों को शुद्ध भक्ति में प्रवेश करना चाहते हैं, जो लोग अपनी स्वतंत्रता का, भगवान का दिया हुआ, इसका सदव्यवहार करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जैसे तात्पर्य समझ करके हमारी शिक्षा के अनुसार इन चीजों को ग्रहण करने, एक एक शब्द का अर्थ बतला करके मैं कह रहा हूं। सचमुच में जो लोग इनके विचारों को ग्रहण करेंगे जरूर सहज रूप में भक्ति पालेंगे। इतना वजह इस श्लोक में अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियमाग्रह जनसंग और लौल्य छ भक्ति बाधक विषयों का उल्लेख है। इनमें से हम लोग पृथक पृथक करके अब विचार करेंगे। इस शुद्ध प्रबंध केवल अत्याहार शब्द के अर्थ के लिए ये लिखा गया, इसमें केवल हम अत्याहार का वर्णन कर रहे हैं। अत्याहार किसको कहते हैं? अधिकांश लोग ये समझते हैं कि अत्याहार शब्द से यहाँ पर रूप गोस्वामी ने अधिक भोजन, अधिक परिमाण में भोजन के लिए की केवल लिखा है। अत्याहार, अति आहार, आहार माने भोजन, किंतु यह बात कुछ ठीक होने पर भी पूरा ठीक नहीं है। अत्याहार माने क्या? कभी कभी पेट भर जाता है, पेट भरने के बाद में सुंदर राबड़ी आई तो राबड़ी को भी ले लिया, और इसके बाद में थोड़ा सा परमान न ले आया, खूब सुंदर बना है और उसमें खीर और देकर तो परमान भी ले लिया, अब अति पेट भर गया। इतने में देखा जी चार रसगुल्ले बिना पूछे हुए ही वो डाल दिया, तो अब ये रसगुल्ले कैसे छोड़े? और फिर रसगुल्ला, अब अत्याहार ये हुआ, और इसके बाद में उसके दोष सब आएंगे, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, रोग इत्यादि आएंगे। वस्तुतः यह बात ठीक नहीं है। केवल अत्याहार से केवल आहार ही मत सोचो, ये पांचों का इंद्रियों के आहार को समझो, केवल जिह्वा के आहार को, पेट के आहार को मत समझो, प्रत्येक इंद्रियों के आहार को ही समझो। नेत्र का आहार, कान का आहार, नाक का आहार, जिह्वा का आहार इत्यादि, ये सबसे समझो। उपदेशार्थ में वाचो बेगम, मनस क्रोध बेगम, जिह्वा उपस्थ बेगम, एतान बेगान जो विषयित धीर सर्वा मां पृथ्वी सशिष्या। जो धैर्य के साथ, धैर्य क्यों लिखा? जब तक ये सहिष्णु नहीं होगा तब तक इन बेगों को नहीं सह सकेगा। खूब सहिष्णु, जो इच्छा ऐसो बोल दिया, जो इच्छा ऐसो कर दिया, ये ऐसा नहीं, धैर्य होना चाहिए, सहिष्णु। जो धैर्य के साथ में वाक्य का वेग, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिह्वा का वेग, उदर का वेग, उपस्थ का वेग, सह जक उदर बेगी, यहाँ पर तो उदर वेग कहा गया। द्वितीय श्लोक में अत्याहार का शब्द, वहां पर तो अधिक वेग है, और एक बतला क्या? अधिक जीवा भोजन की रसास्वादन की लालसा दो, और अधिक बोलना दो बतला है। द्वितीय श्लोक में अत्याहार का शब्द का भोजन कहने से संक्षिप्त सार ग्रंथ में द्विरुक्ति दोष या पड़े। यदि यहाँ पर अत्याहार का अर्थ भी वही ले लिया तो दोनों दो बार हो गया, इसलिए ऐसा मत समझो। यहाँ पर परम गंभीर रूप गोस्वामी अत्याहार शब्द से कुछ अधिक अनुसंधान करना ही पंडित लोगों का कार्य है। लोग अच्छी तरह से समझ बुझ करके इसको प्रयोग में लाए। भोजन का अर्थ मुख्य अर्थ है, किंतु भोजन शब्द से पंचेंद्रियों के द्वारा विषय भोग को फिर समझते हैं। पंचेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिय, पांच पांच कर्मेंद्रिय, के बोल बे ए बोलतो दीज पंचटी कर्मेंद्रिय की पंचटी है अजय ठहरो 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 है আমি বলছি যে সে পঞ্চটি কর্মেন্দ্রিয় কোন কোনটি তুমি বলতো? তোমার পিছিয়ে যে বসে আছে একজন পণ্ডিত মহাধুরন্ধর জগৎগুরু, তুমি বলো, তুমি বলো তো বল, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় কি কি বল? রাধারমন বল, পঞ্চেন্দ্রিক কর্মেন্দ্রিক, তুমি বলো তো ও সর্বজি, জরা জোর সে বলিয়ে, দো তিন ত্বচা বা সাড়ে তিন হুয়া আর ডেড় কন কে কে রা তুমি বলো, আরে ভাই এক সাথ মে সংস্কৃত বালা যো হয় ও বতলাও তো গায়ে ও পঞ্চকর্ম ইন্দ্রিয় ক্যা বতলায়া জরা তুম বতলাও ফির সে বলো ইসা কে কে অর্থ বাক মানে মুখ মানে জি হুয়া আর হ্যাঁ হ্যাঁ জনেন্দ্রিয় আর মলমূত্র মল ত্যাগ ইয়ে পাঁচ কর্মেন্দ্রিয় তিন উপর আর দো নিচে আর জ্ঞানেন্দ্রিয় বলো চক্ষু নাসিকা চক্ষু নাসিকা জিহ্বা কর্ণ আর ইয়ে ত্বচা ইসকে দ্বারা জ্ঞান হতা না ভোজন শব্দ সে পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয় কা ইনকে বিষয় কা ভোগ চক্ষু দ্বারা রূপ কর্ম কান কে দ্বারা শব্দ নাসিকা কে দ্বারা গন্ধ জিহ্বা কে দ্বারা রস আর ত্বক কে দ্বারা মৃদুতা কাঠিন্য উষ্ণ শীত ইয়ে পাঁচো কা ইয়ে কহা গিয়া হ্যায় জ্ঞান ইন্দ্রিয় কে মনুষ্য আপনে পাঁচো ইন্দ্রিয় সে জ্ঞান গ্রহণ করতা হ্যায় মনুষ্য কো গ্রহণ করতা হ্যায় আর বুদ্ধি উস পর বিবেক করতি হ্যায় উসে গ্রহণ করে ইয়া ন করে इस प्रकार प्राकृतिक विषय भोग देहधारी जीवर पक्षे अब अनिवार्य ये पांचों चीज जीवों के लिए अनिवार्य है। अब इसमें अनिवार्य होने पर भी उसको अनुकूल और प्रतिकूल करना जीव के हाथ में, जीव के स्वतंत्रता के ऊपर में। परमित हार करें, परमित देखें, परमित ये सब करें, ये जीवों के लिए भगवान स्वतंत्र बुद्धि के ऊपर में छोड़ देते हैं। विषभयुग के अतिरिक्त जीवन निर्वाह, जीवन यात्रा निर्वाहित नहीं होता। यदि हम ऐसा न करें, आंखों के द्वारा नहीं देखें, नाक के द्वारा यदि श्वास न लें, मुंह के द्वारा यदि आहार नहीं ग्रहण करें, मलमूत्र न त्याग करें, तो एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। विषय भोग त्याग करने मात्र जीव का देह त्याग हो जाएगा। यदि इन विषयों को छोड़ दें तो अभी शरीर त्याग हो जाएगा। इसलिए विषय भोग, विषय त्याग यही परामर्श केवल कल्पना रूढ़ होते पारे, कखनी कार्य में परिणित नहीं। इसलिए इन भोगों को छोड़ देंगे, ये पांचों चीजों को छोड़ देंगे, ये कल्पना मात्र है, ये हो नहीं सकता। देखेंगे नहीं, आंख है, नाक है, सूंघ हवा नहीं लेंगे, मुंह कहे खाएंगे नहीं और मल मूत्र नहीं त्याग करेंगे तो क्या होगा, मर जाएंगे। अब कृष्ण भक्ति के अनुकूल करके इसको यदि ग्रहण करें तभी इसमें भक्ति होगी, प्रतिकूल करेंगे तो हम माया में फंसेंगे। इसी के संबंध में और विचार करेंगे, कल बतलाएंगे, आज यही तक।
हरे हरे राम, हरे राम राम राम, हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरे 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 राम, हरे राम राम
Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.